प्रवचन सार, प्रवचन सुधा, लेक्चर नंबर 663। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो सिद्धानं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूं, सुर असुर नरपति वन्दने प्रविनष्टघाति कर्मणि प्रणमन करुणो धर्म कर्ता तीर्थ श्री महावीर ने परिशेष तीर्थंकर ने सौ सिद्ध शुद्धास्तित्व ने मुनि ज्ञान द्रुग चारित्र तप वीर्य चरण संयुक्त ने ते सर्वने साते तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वंदुवरे मनुजक्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौसिद्धने या नमस्करण करिए ते गणधरणे अध्यापकोने सर्वसाधु समुन्दने कसुशुद्ध दर्शन ज्ञानमुक्त पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करो सामने ये नाति शिव प्राप्ति। आचार्य श्री कुमकुम भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसिंह आचार्य ने तात्पर्युक्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से आठवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 50 पर मावे 50 नया प्रवचन यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। अपनी वही गाथा चल रही है 187 नंबर की। यह प्रवचन सार है। भगवान वितराग सर्वज्ञ देव परमात्मा जिन्हें केवल ज्ञान तीन काल तीन लोक का हुआ उसमें जो वाणी निकली वाणी उसे यहाँ प्रवचन कहते हैं। भगवान वितराग देव की वाणी को प्रवचन कहते हैं। तीर्थंकर देव सर्वज्ञ देव परमात्मा पूर्ण परमात्मा की शक्ति पूर्ण आत्मा की शक्ति का जिन्हें विकास हुआ है ना वो तो पर्याय में प्रकट हुई पूर्ण शक्ति। ऐसी आत्मा में तीन काल तीन लोक जानने देखने की शक्ति जिन्हें प्रकट हुई ऐसे वितराग भगवान के मुख से निकली वाणी उस वाणी को प्रवचन कहते हैं। उस प्रवचन का सार यह भगवान कुमकुंदाचार्य देव वर्णन करते हैं 187 गाथा। थोड़ा सूक्ष्म है थोड़ा चला है फिर से लेते हैं वो फिर से में फिर हस्व करना। फिर से पहली लाइन लास्ट सेकंड पैराग्राफ। यह आत्मा है ना आत्मा अंदर इस देह से भिन्न आत्मा यह आत्मा राग और द्वेष पुण्य और पाप का भाव करता है इतनी उसकी मर्यादा है। यह आत्मा है ना वह शरीर की क्रिया नहीं कर सकता शरीर का हिलना आत्मा की क्रिया नहीं है वो हिलना भी ही रस्व चाहिए। समझ में आया और यह वाणी चलती है वह भी आत्मा का काम नहीं है, वह जड़ का काम है। अंदर आठ कर्म बनते हैं जड़ कर्म। आत्मा अपना स्वरूप ज्ञानानंद शुद्ध आत्मा है, अंतर स्वभाव तो सिद्ध समान आत्मा का है। जैसे सिद्ध भगवान अरिहंत भगवान जैसे पवित्र हुए, पवित्र हुए ने पर्याय में वो प्रकटता हुई उनकी, ऐसा अपना आत्मा अंतर में ज्ञान और आनंद शुद्धता के स्वभाव से भरा है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, अरिहंत और सिद्धों के जैसे पर्याय प्रकट हुई है, उनके स्वभाव जैसे उनकी पूर्ण स्वभाव जैसे परिपूर्ण पर्याय में प्रकट हुआ, तो जैसा स्वभाव वैसा प्रकट हुआ, और स्वभाव तो सभी जीवों का समान है, तो जैसे उनकी प्रकट अवस्था है वैसा मेरा स्वभाव है, क्योंकि स्वभाव तो अव्यक्त होता है और उनमें वो प्रकट व्यक्त हुआ है तो वो हमारे ख्याल में आता है। तो उस स्वभाव की जो पर्याय प्रकट हुई है तो उनकी पर्याय जैसा मेरा स्वभाव है। यहाँ क्या कहते हैं कि वो स्वभाव से भरा है। भूल क्या हुई, अनादि से उसे भूल कर, यानी जो सिद्धों की जो प्रकट पर्याय है वैसा मेरा स्वभाव है, परंतु अनादि से इस स्वभाव को कभी जाना ही नहीं, तो कहते उसको भूल कर जो उसके पर्याय नाम दशा में, पर्याय कहो अवस्था कहो दशा कहो, तो उस दशा में पुण्य और पाप का भाव होता है, उसका वह करता होता है। क्योंकि स्वभाव को भी जाना नहीं है तो पुण्य पाप के भाव होता है, उसका करता होकर उसको करता रहता है, और वह जैसा पुण्य पाप का भाव करे उस प्रकार नए कर्म की रज यानी धूल बनती है। कर्म सूक्ष्म धूल है, वो कर्म के जो स्कंद है वो कैसे है, तो सूक्ष्म प्रकार है ना। हमने स्कंदों के प्रकार देखे थे, याद है कितने देखे थे, छह देखे थे, नाम बताएंगे सुशील अभी। पहले स्थूल स्थूल से देखो, पहला स्थूल स्थूल, फिर स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, तो कर्म ये सूक्ष्म वाला है। हाँ, तो सूक्ष्म धूल है, जैसे वो शरीर धूल है स्थूल धूल है, ये कैसा है औदारिक शरीर है वो तो स्थूल स्थूल है, है? वैसे आठ कर्म की सूक्ष्म धूल है, धूल उसकी योग्यता से उसमें कर्म बंधन हो जाता है, आत्मा उसका करता नहीं, ये पुद्गल की अपनी योग्यता से उसका होता है स्कंद कर्म बंध होता है। ऐसा निर्णय करे तो मैं तो मेरे परिणाम का करने वाला हूँ, मैं कर्म का बंधन या उसके पर्याय का मैं करने वाला नहीं, वह तो जड़ है, शरीर जड़ है, वाणी जड़ है, यह सब मिट्टी पुद्गल द्रव्य है। ये क्यों इतना सब जानना, तो हमें भेद ज्ञान करना है, क्योंकि अनादि से इसी में मैं हूँ ऐसी मान्यता चल रही है और ये मेरा कार्य ऐसा ये मानता है, तो कहते सब मिट्टी पुद्गल द्रव्य है। भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में ऐसा अनंत परमाणु का पुद्गल पिंड चैतन्य से भिन्न है ऐसा देखा है, उन्होंने हर जीव को ऐसा ही देखा है, चैतन्य जुदा है और ये जड़ जो पिंड है पुद्गल का, जैसे कर्म है शरीर है तेज शरीर है, ये सब उससे जुदा है, ऐसा देखा और ऐसा है। यह जड़ वाणी अंदर आठ कर्म उसका काम मेरा नहीं, ऐसा यदि आत्मा ज्ञान करे तो अपने पुण्य पाप के भाव का कर्तृत्व है वह मेरे से है ऐसा मानकर, मैं द्रव्य हूँ, मैं तो शुद्ध चिदानंद ज्ञायक मूर्ति हूँ, ऐसी अंतर्दृष्टि करे तो उसे सम्यक दर्शन रूपी धर्म हो। पहले पहले भेद ज्ञान के लिए अपने पर्याय में राग द्वेष हो मेरा कार्य है, परंतु पुद्गल का कार्य मेरा नहीं ऐसे पहले में पहले लेना। अपने द्रव्य तक आ गया, अभी अपने द्रव्य तक आए तो स्वभाव की दृष्टि कर ले, ख्याल में नहीं, तब वो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। कि सम्यक दर्शन रूपी धर्म हो, जो अनंत काल में एक सेकंड भी सम्यक दर्शन रूपी धर्म अज्ञानी ने कभी उत्पन्न ने पैदा किया नहीं, समझ में आया, शुभाशुभ भाव किए, दयादान व्रत भक्ति शुभ परिणाम है पुण्य है, हिंसा झूठ चोरी विषय भोग वासना पाप है, दोनों भाव बंधन का कारण है। परंतु वे बंधन का कारण होने पर भी कर्म परमाणु का बंधन होता है, उसे आत्मा नहीं करता, वह बात चलती। यहाँ का विषय क्या है? ये जीव स्वयं मोहरांग द्वेष के भाव कर रहा है, परंतु कर्म का बंधन जिसके निमित्त से होता है उसको आत्मा नहीं कर रहा है, वो कार्य आत्मा का नहीं है। सर्वज्ञ भगवान जिन्होंने छह द्रव्य देखे, वितराग परमात्मा केवल ज्ञानी प्रभु जिनके ज्ञान में छह द्रव्य देखे, संख्या से अनंत जाति से छह, तारा बिना आप बताएंगे वो छह की संख्या हर एक द्रव्य की? जाति अपेक्षा छह द्रव्य तो मालूम है आपको, कौन से? जीव पुद्गल काल। हाँ, अभी आपको प्रत्येक द्रव्य की संख्या बतानी है, जीव द्रव्य कितने हैं और पुद्गल, अच्छा आगे कितने हैं, धर्म द्रव्य कितने? एक है, और हम देखो हमेशा ये गड़बड़ी होती है, इसीलिए पूछा। उसके प्रदेश अलग बात है, उसका विस्तार और उसकी संख्या अलग बात है। तो एक एक द्रव्य कौन कौन से है बोलो? हाँ, धर्म अधर्म और आकाश। हाँ, और काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण है, लोक प्रमाण असंख्यात। एक लोक में जितने प्रदेश है उसको कहेंगे लोक प्रमाण असंख्यात, और ऐसे एक लोक दो लोक दस लोक करोड़ लोक ऐसे असंख्यात लोक, वो प्रमाण बहुत अलग है। यानी लोक को असंख्यात गुणा करो उतना है उसका प्रमाण। तो काल द्रव्य कितने हैं? तो एक एक प्रदेश पर एक एक है, उसको कहते हैं लोक प्रमाण असंख्यात, क्योंकि असंख्यात के असंख्यात प्रकार है, उसमें से कौन सा वाला असंख्यात? तो जो लोक में जितने प्रदेश है उतने प्रमाण वाला असंख्यात, उसको कहते हैं लोक प्रमाण असंख्यात। हाँ, देखो यहाँ कह कहते जाति अपेक्षा की बात चल रही थी ना। देखो भगवान ने छह द्रव्य देखे और संख्या से अनंत जाति से छह है ऐसा देखा। सब द्रव्य स्वतंत्र है, कोई पदार्थ किसी की क्रिया का करने हरने वाला नहीं, समझ में आया? जीव तो पुद्गल का नहीं करता, पर जीव अन्य जीव का करेगा कि नहीं? नहीं। और एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का, वो भी नहीं करेगा, क्योंकि द्रव्य तो हर एक द्रव्य अपना अपना स्वतंत्र है, भले सजातीय हो या विजातीय अन्य जाति का हो, कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी हेरा फेरी परिणाम कुछ असर मदद कुछ नहीं करता। यहाँ लिखा ना, कोई पदार्थ किसी क्रिया का करने हरने वाला नहीं, तभी तो उनकी संख्या हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करने लगे नहीं, वो उस द्रव्य के अंदर हो गया, यानी वो दोनों में एकमेक हो गए, तो एक द्रव्य नष्ट हो जाएगा। जैसे कोई ईश्वर जगत का करता नहीं, ऐसे आत्मा शरीर वाणी अंदर जड़ कर्म होते हैं, उसकी क्रिया का बंध का आत्मा करता है नहीं। देखो ईश्वर जगत का करता नहीं है तो बरोबर हम बरोबर पकड़ते हैं और लोगों को दूषण भी देते हैं, ऐसा कैसा मानते हैं? परंतु हम स्वयं शरीर का कर्ता होकर बैठते, मान्यता वही रही, ये कह रहे। यानी जैसे ईश्वर जगत का करता नहीं है, ऐसे आत्मा शरीर वाणी जड़ कर्म अंदर होते हैं, उसकी क्रिया का बंध का आत्मा करता है नहीं, यह बात बतलाते हैं। 187 गाथा। सूक्ष्म बात तो है, उसने यह तत्व की बात अनंत काल में यथार्थ रूप से सुनी नहीं, समझे बिना क्रिया की उसमें राग मंद हो और पुण्य बंद हो जाए तो स्वर्ग आदि मिले। क्या कहना चाहते हैं? यानी जो ये बात है वो बराबर नहीं सुनी उसने, उसने इतना ही कि आत्मा कर्म को बांधता है और कर्म ने जीव को ऐसा ऐसा फल दिया, जो निमित्त का कथन आता है शास्त्र में आता है, तो उसी को सच मानकर वैसा ही वो मानता है, परंतु यथार्थ रूप से सुना नहीं। यथार्थ रूप से क्यों? क्योंकि दो द्रव्यों का भिन्न द्रव्यों का जब इसने उसको किया ऐसा कथन आता है तो ये निमित्त का ज्ञान कराने वाला कथन होता है, परंतु उसने उसी को मान लिया। यानी मैं परद्रव्य का करता हूँ, मैं वाणी जड़ बोलता हूँ, यानी इसका करता मैं हूँ, शरीर का करता मैं हूँ, कर्म का करता मैं हूँ, इतना छोड़ो ये बाहर का सब दुनिया की व्यवस्था करने वाला मैं हूँ, ऐसा उसने मान लिया है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। तो क्या वह समझे बिना क्रिया की, किसकी, आत्मा की तो है नहीं ना, आत्मा का तो ज्ञान तो चल ही रहा था, ये शरीर आदि की जो चल रही थी, रागादि परिणाम जो हो रहे थे, वो मेरी है मान कर रहा है। तो राग मंद हो और पुण्य बंद बन जाए तो स्वर्ग आदि मिले। राग मंद हो यानी कुछ पुण्य के परिणाम शुभ परिणाम हुए, हो सकता है देव गति बांधी, देवायु भी बांधी, स्वर्ग का भोग मिल गया उसको। तो जन्म मरण का अंत उसे नहीं आता, एकाध भोग उसको देव का मिले तो भी क्या अरे अभी तक तो अनंत बार हो चुके हैं ना उसके, देव के भी नरक के भी सभी भव अनंत अनंतों बार कर चुका है, क्योंकि अनंत भव परावर्तन भी किए उसने। खाली देव में जाके ऐसा नहीं है, 10,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष एक समय दो समय तीन समय से कहाँ तक, 33 नहीं 31, मिथ्या तो अवस्था की बात है, भव परावर्तन में 31 अग्रवाला 90 में गिरवेग का भव लेना है उसको, तो वहां तक के सभी भव उसने किए हैं। बीच बीच में कितने बार अक्रम से हो गए ना, पर जब क्रम से होगा तब तो उसको एक भव परावर्तन गिनेंगे, और ऐसे भव परावर्तन अनंत किए, अकेले देव के नहीं, नरक के अलग, मनुष्य के अलग, तिर्यंश के अलग, देव के अलग। मनुष्य में कहां से कहां तक लेना, हाँ? अरे शूद्र भव से शुरू करना, श्वास का 18वां भाग प्रमाण जो आयु है उसमें भी असंख्यात भेद, उसमें भी असंख्यात भेद होंगे एक एक समय के वेरिएशन से, क्योंकि सबकी समान आयु नहीं होती है, मिनिमम से लेकर उसमें भी अंतर्मूर्त के अनेक भेद है। फिर उसके बाद पर्याप्त मनुष्य के अंतर्मूर्त से लेकर आया गर्भ में और एक सेकंड में मर गया, तो उसमें एक एक समय के डिफरेंस से लेते 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 तीन पल्ले तक के सभी भाव लेना, वो पर्याप्त का भाव लेंगे ना, वो भाव है कि नहीं, उसके आयु हुई ना उसने, बिल्कुल वो मनुष्य पर्याप्त मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य की आयु है, आयु है वो, आता है तो पर्याप्ति पूरी होने के लिए अंतर्मूर्त लगता है। अब वो अंतर्मूर्त अपने सेकंड में भी नहीं गिन सकते, इतना छोटा होता है, मालूम ही नहीं है ना गर्भ, विद्याधरों की कर्मभूमि के मनुष्यों की जैसे करोड़ पूर्व तक की होगी, हाँ वैसे होती है, क्योंकि वो तो कर्मभूमि के है ना, मोक्ष भी जाते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहे थे हम, यानी उसने देव की आयु मिली तो कुछ कुछ बहुत नया कुछ नहीं हुआ, आज तक तो अनंत बार हो चुका है, क्योंकि उसने राग के भी सारे जो मिथ्या दृष्टि के योग्य सारे राग जितने असंख्यात लोक प्रमाण एक एक प्रकार का राग भी उसने क्रम से किया है, भाव परावर्तन में क्या नहीं किया, ख्याल में आती है ना, एक क्रम से होना वो तो बहुत दुर्लभ बात होती, क्योंकि उसमें तो चार चार भाव एट ए टाइम हमको कंसिडर करनी है, और वो सब यानी कायम रखते हुए एक एक योग स्थान पलटता है, यानी वो बहुत विस्तार की बात है। परंतु ये अनादि का अर्थ अब इस जीव को नहीं ख्याल में आता है, अनादि क्या चीज है, क्योंकि इतने परावर्तन जो लंबे लंबे बड़े बड़े हैं अनंत अनंत काल के, वो भी अनंत बार कर चुका है, तो हमें तो ये मनुष्य भव अरे इतना ही हमको इतना अपना अस्तित्व मानकर बैठे हैं, पर अभी तक कितना काल गवाया है उसका विचार भी करे तो वो डर जाए, और डर जाए तो अच्छा है, डरता नहीं क्योंकि रोज का उसका रूटीन बन गया है, और सुबह से शाम तक तो यही हवा हाँ चलता है, इंद्रियों के विषयों की बात चलती है, खाते भी है खिलाते भी रहते हैं और सब कुछ चलती रहते क्या है देखो हाँ बाहर तो क्या क्या चल रहा है, अभी शास्त्र स्वाध्याय करते तो ये पता चलता है ना कि ये बात ऐसी है, बाकी तो बाहर दुनिया वालों के साथ बात करेंगे तो कहीं की कहीं चलती रहती है। देखो यह तत्व की बात अनंत काल में यथार्थ रूप से सुनी नहीं, समझे बिना क्रिया की, उसमें राग मंद हो और पुण्य बंध जाए तो स्वर्ग आदि मिले, क्योंकि केवल क्रिया से स्वर्ग नहीं मिलता है, क्रिया से कुछ फल नहीं मिलता, शरीर की क्रिया का कोई फल नहीं है, फल किसका है, राग का है, भाव का फल है। ये जो कर्म रूप से भी जो हम निमित्त रूप से कहेंगे बनते हैं, वो भी भाव से बनेंगे, क्रिया से नहीं। जैसे हमने पूजन की तो कितना द्रव्य कहाँ से किस में चढ़ाया, चांदी की थाली में चढ़ाया कि सोने की थाली में चढ़ाया, उसका फल है आपको? उसका कुछ फल नहीं है। तो उस समय हम भगवान के गुणों का स्मरण कर रहे हैं तो उसमें राग मंद हो तो उसका फल है। अब वो दुनिया को दिखाने के लिए देखो मैं कितना द्रव्य अच्छा चढ़ाता हूँ, वो तो मान कषाय का पोषण करता हो, वो तो पाप बांध रहा है, ध्यान में है ना। ये तो कहते राग मंद हो और पुण्य बन जाए तो स्वर्ग आदि मिले।
आपने जो बताया
हाँ?
मैं कन्नन युग के अपेक्षा से बता रहा हूँ
हाँ?
कि हमें जो कर्म बंध होता है
हाँ?
हमें जो कर्म बंध होता है उसको दो कारण बताए, एक कषाय और एक योग
हाँ?
तो दूसरा अन्य कोई कारण नहीं, यानी आपने जो बताया कि क्रिया से धर्म नहीं होता है, क्रिया से कुछ बंधन नहीं होता है
हाँ?
यही हमको कर्णन योग के माध्यम से भी ख्याल में आता है।
बिल्कुल,
कि हमें जो कर्म बंध होता है वो कषाय के कारण से होता है,
क्योंकि उसमें मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय में सारे कषाय आ गए और योग उसी से बंध है। यानी कषाय चले जाते हैं, अकेला योग है कहाँ, ग्यारहवें बारहवें तेरहवें में।
यानी हम जो समझते हैं कि कुछ क्रिया करने से हमको फल अच्छा मिलेगा, वो बात सही नहीं है।
क्योंकि क्या प्रश्न भी लोग ऐसे पूछते हैं ना, निगोद का जीव मरकर मनुष्य में आ सकता है, बादर निगोद मरकर और उसी भूमि में मोक्ष भी जा सकता है, तो सारे मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्व मनुष्यायु वज्रषभ नारा सहन सब बांध के आया है, तो लोगों का प्रश्न क्या है, वहाँ निगोद में कैसा पुण्य करता होगा? यानी वहाँ वो क्रिया को ढूंढता है, वो क्या क्रिया करता होगा? अरे वो तो भावों का फल है, वहाँ पर भी संकलेश और विशुद्धि ऐसे भाव चलते हैं, राग की मंदता और राग की तीव्रता अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में पलटते, वहाँ भी कभी तीरंज गति बांधेगा कभी मनुष्य गति बांधेगा, तीरंज गति बांधेगा तो कभी एक इंद्रिय जाति द्विंद्रिय जाति पंचेंद्रिय जाति तक कोई भी जाति बांधता रहेगा, यानी वहाँ पर भी अल्टरनेटली होता रहता। हम जो कहते हैं ना एक इंद्रिय में कितना लंबा काल रहता है जीव, कोई जीव अधिक से अधिक, वो तो निगोद में असंख्यात पुद्गल परावर्तन, तो वो मनुष्य गति बांधेगा कि नहीं बांधेगा? तो मनुष्य में क्यों नहीं आया? मनुष्यायु नहीं बांधी, आयु बांधते समय तिरंज आयु तिरंज गति बांधता रहा, तभी तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक एक इंद्रिय में भटकेगा, क्योंकि एक इंद्रिय की ही आयु बांधी हर बार, तभी तो संभव है ना। मरकर एक इंद्रिय में जाना है तो एक इंद्रिय संबंधी आयु बांधनी है, तिरंज आयु है परंतु वो कौन सी है, एक इंद्रिय जाति के साथ बांधी, यानी मनुष्य गति नहीं बांधता वो बात नहीं थी। गति बांधते रहते उससे कुछ नहीं है, मनुष्य गति एक इंद्रियों के दो ही ऑप्शन है उसका, वो तो तिरंज गति रूप से उदय में आता है, गति है ना तो गति रूप से उदय में आता है।
देखो ऐसा है कि ये जो गति है वो नाम कर्म का भेद
है
और हम सतत सात कर्म तो मानते हैं हर समय, तो नाम कर्म में उसके जो बेटा भेद है उसमें गति नाम कर्म आ गया। ये गति और आयु में बहुत लोगों का झगड़ा होता है, गड़बड़ होती है।
देखो चतुर इंद्रिय तक तो दो ही ऑप्शन है, या तो तिरंज गति बांधेगा या मनुष्य गति बांधेगा, असंगी पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय है, अभी मनुष्य तिरंज है यहाँ पर तो क्या चारों गति बांधेगा? देव में ऑप्शन है दो गति का नारकी के भी लिए दो गति, पर मनुष्य तिरंज जो है तिरंज में पंचेंद्रिय लेना तो चारों गतियों का बंध होता रहता है अल्टरनेटली, परंतु गति बांधे तो उस भाव में जाएगा ये जरूरी नहीं है। आयु जिस गति संबंधी जो आयु बंधे ना चार आयु में से, वो उसका भाव नेक्स्ट भाव नक्की होता है, और एक बार आयु बांधता है तो फिर चेंज होकर एक बार मनुष्यायु बांधी फिर मनुष्यायु टर्न होकर तिरंज आयु हो जावे, ऐसे नहीं होती बात, जो बांधी वो फिक्स है अभी।
नहीं नहीं मैं ये कह रहा था कि अभी हमारे उदय में एक इंद्रिय जाति कर्म का भी उदय आ रहा है, लेकिन वो पंचम
पंचेंद्रिय जाति रूप से होकर तो उसको एक इंद्रिय जाति का उदय नहीं कहलाएगा, क्योंकि उदय में आते हुए पंचेंद्रिय जाति रूप टर्न होकर उदय में आती है, उदय में हम पंचेंद्रिय जाति का ही कहेंगे, पर उसमें क्या होता है, सत्ता में पड़ा है तो जिसकी स्थिति पूरी हुई है वो तो उदय में आना ही है। तो वहाँ जो उदय रूप अन्य प्रकृतियाँ है उसकी, अभी नाम कर्म की अन्य प्रकृतियाँ, उसमें वो विभाजित होकर उदय में आते हैं, पर उसके अपने स्वरूप से उसका फल नहीं मिलता है। फल किस रूप होगा? पंचेंद्रिय जाति का है, जब अभी मनुष्य गति चले तो मनुष्य गति का हो। कोई लोग ऐसे विद्वान भी कहने हमने सुना था, वो नर गति के परमाणु मनुष्य गति रूप से उदय में आता है तो नर जैसा कहते, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सभी गतियों के परमाणु पड़े हैं एट अ टाइम। देव गति, तिरंज गति और नर गति, तीनों गति के परमाणु मनुष्य गति रूप से आ रहे हैं। मनुष्य गति तो मनुष्य गति रूप से आ ही रही है, अन्य तीनों के क्योंकि निषेक सभी के बने थे और हर एक निषेक उदय के समय से लेकर वहाँ पड़े हैं, तो उदय में आते आते वो मनुष्य गति रूप से हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी नरक गति के परमाणु टर्न हुए तो नरक के जैसा वो नार के जैसा करता, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका अपने रूप से फल ही नहीं है। नहीं समझे? देखो अभी सम्य दर्शन हुआ तो अनंतानुबंधी वहां सत्ता में है कि नहीं है? नहीं, कैसे सत्ता में है, उदय में नहीं है, तो क्या होता है उसका? खिरना तो है, प्रदेश तो उदय में आएंगे। किस रूप से? चौथा गुण स्थान वाला है तो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान और संज्वलन रूप से उदय में आएंगे। तो फल किस रूप से मिलेगा? अनंतानुबंधी जैसे नहीं, अभी जो तीन कषाय जो है उस रूप से फल मिलेगा उसका। ख्याल में है ना? जिस रूप से उदय में आ रहा है उस रूप से फल मिलता है। जैसे हम क्षोभ में क्या कहते हैं, जो सर्वघाती है वो देशघाती रूप होकर टर्न होकर उदय में आती है, तो फल देशघाती जैसा मिलता है। सर्वघाती का फल मिले तो पूरा नष्ट हो जाए, ज्ञानावरण का क्षोभ होता है। क्षोभ होता है ना, क्या सर्वघाती का उदय नहीं है, देशघाती का उदय है। तो सत्ता में कैसे थे? सर्वघाती थे, देशघाती भी थे। सर्वघाती का उदय हो जाए तो पूरा घात हो जावे। जैसे हम मति ज्ञानावरण की बात करते हैं, मति ज्ञानावरण प्रकृति कैसी है? देशघाती प्रकृति है। उसमें स्पर्धक यानी परमाणु दो प्रकार के हैं, सर्वघाती भी है देशघाती भी है। तो हमारा ज्ञान का उघाड़ भी चल रहा है तो हमारे सर्वघाती के देशघाती रूप होकर उदय में आते हैं।
अब आप 10 करण के पुस्तक लिखो ना।
कितने कितने पुस्तकें लिखेंगे अभी? लिखना है, फिर छापना है, फिर चेक करना है। अभी कर्मकांड की बात चल रही है ना, आया है प्रूफ। आपने किया था ना कुछ उसमें? 14 ही किया था। अच्छा, वो आए 60 तक आए सभी। देखो यहाँ पढ़ते आगे, हाँ, जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता। भगवान वितराग देव सर्वज्ञ परमात्मा ने पृथक पृथक 6 द्रव्य वस्तु भिन्न भिन्न देखी। कोई द्रव्य का अर्थात कोई वस्तु का यानी अन्य किसी वस्तु का कर्ता हर्ता है नहीं, परंतु उसकी मान्यता में वह बात अनंत काल में यथार्थ रूप से आई नहीं। सुन तो लेता है, बोलता भी है, परंतु यथार्थ रूप से उसको उसका भाव भाषण नहीं हो रहा है। ये कह रहे, यह शरीर चलता है तो मैं आत्मा उसका चलाने वाला नहीं, यह बात उसे यथार्थ रूप से नहीं बैठी। ऐसा उसको अंदर से एहसास नहीं हो रहा है कि मेरा कार्य नहीं है, ये पर का कार्य। ऐसे जैसे वस्त्र से भिन्नता पहचानता है, कैसे ऐसे शरीर से भिन्नता लगती है उसको? तो नहीं लग रही, लेकिन तो यथार्थ रूप से उसने नहीं मानी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है पंडित टोडरमल जी ने कि जैसे वस्त्र से इसको भिन्नता ख्याल में आती है, वैसे जब तक शरीर से नहीं आएगी, राग से नहीं आएगी, ये वाणी बोलते उससे नहीं आएगी, तब तक उसको स्वयं का अनुभव नहीं हुआ है, तब तक उसने यथार्थ रूप से उसको स्वीकार नहीं किया है। तो कहते यह शरीर चलता है तो मैं आत्मा उसको चलाने वाला नहीं, यह बात उसे यथार्थ रूप से नहीं बैठी, ना स्वीकार नहीं हुई। उससे ऐसा ही लगा कि आत्मा बिना शरीर हिलता है, आत्मा बिना हिलता है, आत्मा अपनी पर्याय को करता है, जड़ उसकी दशा को, हिलने की क्रिया को करता है। मुझे हमेशा वो दुबई वाले भाई याद आते हैं, वो पूछते थे जैसे वो तो खिलौने होते हैं ना, बैटरी चाबी दे दो तो ऐसे 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 तो बजाते रहते हैं, हाँ, तो ऐसे अंदर आत्मा है तभी तो शरीर हिलता है, बिना आत्मा के कैसे हिलेगा, ऐसा प्रश्न पूछते थे वो। तो कहते आत्मा अपनी पर्याय का करता है, शरीर उसकी दशा को हिलने की क्रिया को करता है, यह बात अंदर में बैठी नहीं, इसलिए ऐसे प्रश्न भी उठते हैं। अजीव को जीव माना, उसको तो ऐसा लगता है मैं तो समझदार जीव हूँ, समझने वाला हूँ, अक्कल वाला हूँ, और वो तो पुद्गल, उसमें क्या अक्ल है, तो वो कैसे करता है अपने क्रिया, ये उसकी मान्यता है। ये पेंसिल यहाँ से यहाँ चली गई, देखो मैंने उठाई ना, क्योंकि मैं सोच समझ कर इच्छा करके उठाता हूँ, पुद्गल में कैसा होगा, उसमें क्या शक्ति है, तो उसको उसके अंदरूनी शक्ति का उसके पता नहीं है, उसको ऐसा ही लगता है ना मैं इसको हिला नहीं तब तक ये नहीं हिलता, ये देखो यहाँ पड़ी रही, अब मैंने उठाई नहीं तो ये नहीं उठ रही। अरे पर जब ये उठने की क्रिया तू समझता था तूने की, तो वो अपने से हिल रही थी, हाथ भी अपने से हिल रहा था, और मैंने आत्मा ने क्या माना, ये मेरी क्रिया है, ऐसा लगता है ना, दिन में तो ऐसा ही लगता है। यहाँ क्या कहते हैं देखो, अजीव को जीव माना, वह अजीव की मिट्टी की दशा है, चलना फिरना जड़ की क्रिया है, आत्मा की नहीं, कैसे बैठे, कैसे बैठे ना, कैसे उसको समझे, आत्मा तो अंतर में अपने ज्ञान को करे, अथवा राग और द्वेष पुण्य पाप भाव को करे, यानी अधिक से अधिक क्या करता है, तो अज्ञान अवस्था में तो ये पुण्य पाप के भाव को करता है, वैसे तो उसका कार्य क्या है, तो हमेशा का ज्ञान करना है, परंतु अथवा राग द्वेष और पुण्य पाप का भाव भी वो करता है। इसके अलावा जड़ की क्रिया का करने वाला तीन काल में अज्ञानी भी शरीर को हिला सके, वाणी बोल सके, कर्म बांध सके, ऐसी उसके आत्मा में शक्ति है नहीं, यानी क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ इसका निर्णय तो होना चाहिए, परंतु ऐसी शक्ति की उसे खबर नहीं, अनादिकाल से बेभान हुआ। अभी कोई कोमा में चला जाएगा तो कैसा लगता है, दुख लगता है ना, अरे कितने महीनों से कोमा में है, और ये क्या अनादि काल से बेभान है, नहीं वही है कोमा की अवस्था चल रही है। 84 लाख योनियों में रूलते हैं, रखड़ते हैं। आचार्य महाराज 187 गाथा में कहते कि भैया अब पुद्गल कर्मों की, पुद्गल कर्म जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म है ना, वो है के ऊपर बिंदी चाहिए, है ना, 8 है ना, अनेक वचन में है के ऊपर बिंदी आती है। यहाँ कर्म जो बनते हैं यहाँ पर भी, वे उसकी योग्यता से बनते हैं, आत्मा नहीं बांधता ऐसा कहते हैं, लेकिन हमने अब तक तो ऐसा सुना है कि आत्मा कर्म बांधे और आत्मा कर्म छोड़े, यहाँ भगवान कहते हैं ऐसा है ही नहीं, वह जड़ पदार्थ स्वतंत्र अपने से बनता है। देखो क्या कहते हैं, अब पुद्गल कर्मों की विचित्रता, विचित्रता ने विविधता, अनेक रूपता, वो आता ना नाना कम्मा, कौन याद आते हैं, नाना जीवा नाना कम्मा, नहीं याद आपको, चामड़ा जी हमेशा वो प्रवचन नियम सर का लेते थे हम। अब पुद्गल कर्मों की विचित्रता, आत्मा में जो भिन्न जड़ कर्म मिट्टी है, उसमें ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि रूप अनेक प्रकारता को कौन करता है, इसका निरूपण करते, ये तो गाथा का हेडिंग है ना, यानी जो अनेक विविध प्रकार के कर्म 8 अलग अलग प्रकार के जो बन रहे हैं, तो उसमें कौन करता है, इसका भगवान त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देवाधिदेव जैन परमेश्वर ने जो देखा, ऐसा जाना, ऐसा है, ऐसा कहा। इस शरीर की क्रिया जैसे तेरे से भिन्न 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 है, वैसे अंदर 8 कर्म के रचकण जो धूल है, वह भी तेरे से भिन्न है, उसका भी तुम बांधने वाला, करने वाला, छोड़ने वाला है नहीं, तुम तो तुम्हारे परिणाम का करने वाला और परिणाम को छोड़ने वाले तुम हो, छोड़ने क्योंकि हर समय नया परिणाम करता है, पुराने का व्यय होता है, इसलिए परिणाम को करने वाला और छोड़ने वाले तुम हो, समझ में आया। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि यानी आठ है ना, आठ कर्म है ना। अभी जहां वहां जो बिंदी देना है तो देते जाओ। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वेदनीय मोहनीय आयुष्य नाम गोत्र और अंतराय, ऐसे आठ कर्म है। इन आठ कर्म की प्रकृति 148 है। एक एक प्रकृति में अनंता परमाणु पॉइंट रचकन है। अनंत परमाणु का पिंड है, स्कंद है। एक एक स्कंद में अनंत परमाणु है। एक एक परमाणु अपनी क्रिया से परिणमन कर रहा है, यानी भले वो कर्म बनते हैं तो अनंत संख्या में बनते हैं, परंतु प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है। आत्मा उसका कर्ता हर्ता नहीं। यदि कर्ता माने तो अजीव को जीव माना, अजीव को जीव माने तो मिथ्या दृष्टि है, उसे धर्म की खबर नहीं। पुद्गल कर्मों की विचित्रता इन्हें ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि रूप अनेक प्रकारता को कौन करता है, इसका निरूपण करते हैं। ये जो हमने गाथा पढ़ी थी उसकी टीका, जैसे नए मेघ जल के दृष्टांत देते हैं। जैसे नए मेघ अर्थात नया मेघ आषाढ़ महीने में आता है ना, पहला बरसात, नए मेघ जल के भूमि संयोग रूप परिणाम के, यानी पहली जो बरसात आती है तो उस समय जो जमीन पर पड़ती है तो उसके साथ संयोग हुआ उसका, नया पानी जल गिरता है और भूमि का जमीन का संयोग उस जल को होता है, तो उस समय अन्य पुद्गल परिणाम, उस समय में अन्य जड़ पुद्गल परिणाम स्वयमेव विचित्रता को प्राप्त होते हैं। ना जमीन उस रूप से हुई है हरियाली रूप से, और न ही वो पानी हरियाली रूप से हुए, अन्य ही पुद्गल परमाणु उस रूप से परिणमित हुए, ये कहना चाहते हैं। उस समय हरा मैदान हो जाता है कि नहीं, हरित काय, भिन्न भिन्न पेड़ थोर अपने अपने कारण से, वे परमाणु रचकण अपने अपने कारण से उस पर्याय को परिणमते हैं। जल के काल में जल और भूमि का संयोग हुआ उस कारण से नहीं, देखो क्या कहते हैं, उस कारण से नहीं हुए, उस काल में हुए, ख्याल में ना, जल ने उनको परिणमाया, ना जल रूप परिणमित हुआ है, परंतु उस काल में वो स्वयं परिणमित हुए। देखो संयोग हुआ उस कारण से नहीं तो उस काल में, जल और भूमि का संयोग हुआ वह रचकण भिन्न है, और नई अवस्था उत्पन्न होती है वह भिन्न है। नई अवस्था ने वो जो हरियाली है, हमने कल नाम देखे थे ना, बारिश में बिल्ली के टोप उत्पन्न नहीं होते, यानी जो मशरूम जो है ये छत्ते जैसे ऐसे छोटे छोटे उत्पन्न होते हैं, हरा मैदान हो जाता है, यानी हरियाली आती है, फल फूल ऊपर मेघ जल आता है और भूमि को संयोग होता है, उस समय में वह रचकण यानी परमाणु अपनी पर्याय से कर्ता होकर ऐसा हरा मैदान आदि हो जाता है। जल उसका कर्ता हर्ता नहीं। भारी बात भाई, समझ में आया? उसी प्रकार वह तो दृष्टांत दिया, नया मेघ जब आषाढ़ महीने में पहली बरसात आती है तब हरा मैदान हो जाता है, काई हो जाती है, काई यानी शैवाल, निगो समझते, काई काई, जल में काई नहीं होती है, लील फूग कहते हैं ना, तुम्हारे में काई कहते हैं, काई नहीं समझते, लील को काई कहते हैं ना, लील कहते हैं, काई ही कहते हैं। जल में लील होती है कि नहीं, उसमें एक शरीर में अनंत जीव है, यानी वो निगोद से भरा है, दिखने में आता है वह शरीर है आत्मा नहीं, आत्मा तो अरूपी भिन्न है, शरीर परमाणु से अपने कारण से शरीर रचा जाता है, आत्मा उस जड़ का शरीर का करने वाला नहीं। अथवा उस भूमि में जल आया तो उसके कारण से लील फूग या काई हुई, ऐसा नहीं, अपने कारण पुद्गल परमाणु पर्याय रूप परिणमते हैं। पर्याय नाम भी सुना नहीं हो, पर्याय क्या, भगवान के मार्ग में द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, भाई भगवान जाने, यानी इतने भी अभी पता नहीं है और फिर धर्म करना चाहते हैं कोई क्रिया करके धर्म होगा ऐसा मानते हैं, ये कह रहे हैं कि द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, तो भाई भगवान जाने, हमें क्या उससे। भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा कहते हैं कि अनंत आत्मा, अनंत परमाणु, ऐसे एक एक द्रव्य में अनंत गुण और अनंत गुण की एक समय की पर्याय, एक समय में अनंती पर्याय। पर्याय क्या? मुमुक्षु ने कुछ बोला बीच में, गुरुदेव श्री कहते वही बात कहते हैं, पहले समय में परमाणु में ऐसा होने वाला नहीं था। जल और भूमि संयोग के काल में मैदान हरा हो जाता है, लील फूग हो जाती है, बिल्ली का टोप होता है, इंद्रगुप्त होता है, इंद्रगुप्त नाम के कीड़े होते हैं, लाल कीड़े नहीं होते अपने, शू के वाय गोकड़ गाय लाल लाल होती है ना, बाहर दिखता है वो तो परमाणु है, ये मराठी में गोगल गाय कहते हैं, वो तो गोगल गाय अलग है और ये और अलग होते हैं, ये लाल, हाँ वो तो सेंटीपेड, वो तो अलग होते हैं, बहुत उसमें बहुत वैरायटी होती है। नहीं नहीं, इंद्रगुप्त अलग है, छोटे छोटे ऐसे लाल 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 बहुत होते हैं, ईयर जैसे, हाँ वो पैसा वही वो जैसे गोल हो जाता है, हाँ उसको सेंटीपेड कहते हैं। वो अलग ही होते हैं, हाँ अंदर जो भिन्न है अरूपी है, अरूपी आत्मा उस शरीर की रचना नहीं करते, आहा हा, शरीर का एक एक रचकण भिन्न है, एक एक परमाणु भिन्न है, यह अंगुली मूल चीज नहीं है, इसका टुकड़ा करते 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 आखिर का सूक्ष्म टुकड़ा रह जाए, एक्चुअली गुजराती में टुकड़ा बराबर है, हिंदी में उट्टू रसो हो जाता है, टुकड़ा में टू रसो, बहुत बार आया है जब करते जाना भी, चार बार तो दिखा मुझे, पढ़ती हूँ फिर, यह अंगुली मूल चीज नहीं है, उसका टुकड़ा करते 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 आखिर का सूक्ष्म टुकड़ा रह जाए, उसे भगवान परमाणु कहते हैं, परमाणु सूक्ष्म टुकड़ा, वह टुकड़ा स्वयं पदार्थ है, यानी एक सिंगल परमाणु, वो तो टुकड़ा भी नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो तो दिखेगा नहीं इतना छोटा करने के लिए, पर समझाने के लिए उसको समझाने के लिए टुकड़ा करते करते ऐसा बोला उन्होंने, यानी वो परमाणु भी स्वयं पदार्थ है, वह अपने कारण से पलटता है और अपने कारण से रूपांतर होकर क्षेत्रांतर होता है, यानी उसकी अवस्थाएं भी पलटती है और क्रियावती शक्ति है उसमें, तो क्षेत्रांतर भी होता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना वो भी उसका अपना कार्य है। ऐसे परमाणु में अनंती शक्ति भगवान कहते हैं, जड़ में जड़ की शक्ति, चैतन्य में चैतन्य की शक्ति, दोनों पदार्थ की भिन्न भिन्न शक्ति है, हर एक द्रव्य में अनंती अनंती शक्ति है। हम सबका वर्णन नहीं करते बैठेंगे, क्योंकि हमें अपने अपने आत्मा को जाना है, तो जितना जरूरी है उतने स्पर्श रस गंध वर्ण आदि रूप बताते हैं उसके, क्योंकि हमको उनको भिन्न पहचानना है, उनकी अनंत शक्ति को नहीं देखते बैठना है, अपनी शक्ति को पहचानना है ना, क्योंकि उनकी शक्तियों को पहचानने का भी हमारा अपना कार्य, ज्ञान का कार्य है। अब बाकी जो हम एडवेंचर्स देखते हैं, इन्वेंशंस देखते हैं, उसकी महत्ता आती है ना, उन्हें तो ज्ञान की महत्ता है ना, वो पुद्गल की कहाँ है, पुद्गल की शक्ति को जाना किसने, ज्ञान ने जाना है, ये दोनों पदार्थ की भिन्न भिन्न शक्ति है। कहते हैं कि जल के संयोग काल में ऐसा क्यों बना, यह प्रश्न है, उस काल में बनाए, जल ने नहीं बनाया है, मुमुक्षु ने कुछ कहा बीच में, गुरुदेव श्री कहते हैं वह तो आया ना, देखो ना पुद्गल परिणाम स्वयमेव, क्या कहा, नए मेघ जल के भूमि संयोग रूप परिणाम के समय, भूमि को जल का संयोग हुआ उस समय अन्य पुद्गल परिणाम, यानी अन्य पुद्गल उस रूप से परिणमित हुए। देखो दूसरा पुद्गल अनंत परमाणु भिन्न है, वे स्वयं वो विचित्रता को प्राप्त होते हैं। वह तो दृष्टांत दिया, अब उसका सिद्धांत। उसी प्रकार आत्मा के शुभाशुभ परिणाम के समय, समय की बात है, काल वही है। आत्मा उस रूप परिणत नहीं हुआ है, आत्मा ने उसको परिणमाया नहीं है, तो आत्मा के शुभाशुभ परिणाम के समय आत्मा क्या करता है? दयादान, व्रत भक्ति, पूजा का भाव, कोमलता, ये सब शुभ भाव है, पुण्य भाव है। और हिंसा, झूठ, चोरी, विषय भोग, वासना, कमाना, पाप भाव है, ये शुभ और अशुभ भाव जीव करे, उससे कर्म बंधे वह आत्मा नहीं करता। कोई कहे कि तो उस समय क्यों हुआ? वह समय था, उस परमाणु में वह पर्याय कर्म होने का समय था। क्या कहा? प्रत्येक द्रव्य अनादि से परिणमता है और उसकी प्रत्येक पर्याय सुनिश्चित है, तो कर्म अपने उस काल में स्वयं अपने योग्यता से परिणमित हुआ। यहाँ आत्मा ने राग द्वेष किया या शुभाशुभ भाव किया, इसलिए कर्म बंधना पड़ा, ऐसा है नहीं, वस्तु में ऐसा है नहीं। जड़ की दशा जड़ करे, चैतन्य की दशा चैतन्य करे। आप कहेंगे फिर सिद्ध भगवान राग द्वेष नहीं करते तो उनको कर्म भी नहीं बनता, तो राग द्वेष के कारण कर्म बंधा कि नहीं बंधा? तो राग द्वेष का परिणाम आत्मा ने किया, आत्मा में हुआ, उस समय में कर्म में वो जो कर्म परमाणु जो बंधे उसमें अपनी योग्यता से वो स्वयं उस रूप परिणमित हुए। समय वही है, कहते वो तो जड़ की दशा जड़ करे, चैतन्य की दशा चैतन्य करे, दोनों भिन्न भिन्न है। शरीर की दशा शरीर करे, आत्मा की दशा आत्मा करे, भिन्न भिन्न पदार्थ क्या त्रिकाल में एक होता है? शरीर और आत्मा तद्दन भिन्न है, तद्दन बिल्कुल भिन्न है। क्या दोनों एक हो जाते हैं? वैसे कर्म और आत्मा तद्दन भिन्न है, कर्म और आत्मा कभी एक होते नहीं। कहते हैं उसी प्रकार आत्मा के शुभाशुभ परिणाम, देखो शुभाशुभ भाव कहा है, जीव तो शुभ और अशुभ भाव करे, दयादान, भक्ति, पूजा, व्रत, भगवान का नाम स्मरण आदि सब शुभ भाव है, अथवा हिंसा, झूठ, चोरी, विषय भोग, वासना, काम, क्रोध भाव भाव है, पाप भाव है। आत्मा के शुभाशुभ परिणाम के समय, पहले में क्या कहा था? भूमि पर उस ऊपर से जल गिरा, वह भूमि का और जल का परिणाम का संयोग हुआ, उस समय, वो समय की बात है, उसी काल में अन्य पुद्गल विचित्रता को धारण करते हैं। ऐसे आत्मा शुभाशुभ परिणाम के काल में, समय है ना, समय गुजरातीमां शुं छे, काले, परिणाम ना काले, यहाँ परिणाम के समय है, यह हिंदी भाषा है ना, क्या कहते हैं? आत्मा अपनी पर्याय में, पर्याय ने अवस्था, अवस्था ने हालत, उसमें शुभ और अशुभ भाव, पुण्य और पाप भाव, बंध के कारण रूप भाव करे, उसी समय कर्म पुद्गल परिणाम वास्तव में स्वयं वो विचित्रता को प्राप्त होते हैं। देखो दोनों की क्रिया अलग है, समय एक है। आत्मा तो अपना शुभ और अशुभ भाव करे, बस इतना ही करे, इसके अलावा कर्म की रचना करे यह आत्मा में है नहीं। कर्म की रचना जड़ करता है, जड़ में कैसे ऐसी रचना की ताकत हुई? जड़ में कहाँ से शक्ति आई? एक एक परमाणु में कर्म होने की जो शक्ति है उस समय वही कर्मरूप होती है, इसको कहते योग्य द्रव्य। क्या कहा? परसों मैंने सादी द्रव्य और अनादि द्रव्य की बात उठाई थी, अब उसमें भी सादी हो या अनादि द्रव्य हो, यानी पुद्गल परमाणु लेकर छोड़े हुए हो या नए हो, तो उसमें योग्य द्रव्य होता है, अयोग्य द्रव्य होता है। योग्य द्रव्य ने उसी समय में वो परिणमने की योग्यता जिसमें है वो है योग्य द्रव्य, और जिसमें उस समय परिणमने की योग्यता नहीं, भले बाद में वो हो जाएगी, उसको कहेंगे अयोग्य द्रव्य। तो जी जो कर्म बनते हैं तो कौन से बनते हैं? तो सादी हो या अनादि हो, उसमें योग्य द्रव्य में से कुछ द्रव्य बनेगा, सभी नहीं, क्योंकि अभी एक निगोच शरीर है उसमें अनंत जीव है, तो कौन से जीव के साथ कौन से परमाणु जाएंगे वो कौन नक्की करेगा, उसके अपनी योग्यता के ख्याल में ही न भाई। तो योग्य द्रव्य जो योग्य है ना उस समय परिणमने के योग्य है वो उस रूप परिणमित हो गए, और उसमें भी कुछ तो ज्ञानावरण रूप हो गए, कोई दर्शनारूप हो गए, उसके अपनी अपनी वेरिएशन होगी। यहाँ तो वही विषय चल रहा है, उसको करने वाला कौन है, तो कोई नहीं, वो पुद्गल की अपनी योग्यता है। द्रव्य की खबर नहीं, गुण की खबर नहीं, खबर नहीं पर्याय क्या है, चलो धर्म करे। कहाँ से धूल से धूल में से कर्म धर्म होता है, चीज क्या है उसकी तो खबर नहीं, मैं कौन वस्तु हूँ उसमें क्या मेरी शक्तियाँ हैं, शक्ति ने गुण और मेरी पर्याय क्या होती है, जड़ रचकण क्या है, रचकण में गुण शक्ति क्या है और उसमें पर्याय अवस्था क्या होती है, सब भिन्न भिन्न है। तो जीव में तो इतनी शक्तियाँ हैं, रचकण में है कि नहीं है, उसकी अपनी है, आत्मा के कारण वो नहीं है। कोई आत्मा कोई जड़ का करने वाला हरने वाला है ही नहीं, समझ में आया। आत्मा के शुभाशुभ परिणाम के समय, समय की बात है ना, काल एक है। कर्म पुद्गल परिणाम देखो, वास्तव में स्वयमेव कोई मति ज्ञानावरणीय रूप कोई आयुष रूप परमाणु बन जाए, जीव तो भाव करे बस, फिर आयुष्य का बंधना तो परमाणु की शक्ति से आयुष्य बन जाता है, आयुष्य कोई आत्मा बांधता नहीं। मुमुक्षु कहते कठिन हो रहा है, गुरुदेश कहते कठिन हो रहा है, तुम तो जयपुर के रहने वाले हो, जयपुर तो दिगंबर का बड़ा शहर है, समझ में आया। क्या है ये सुनने की आदत जिसको नहीं होगी, इसलिए बारंबार गुरुदेव भी कह रहे हैं ना कि द्रव्य क्या गुण क्या पर्याय क्या खबर नहीं, उनके तो रोज के सुनने वाले नहीं होंगे, कोई नए आए हैं बैठे हैं जिनको इसका पता नहीं है, ऐसे लोगों के साथ वो बात कर रहे, इसलिए बार बार उसको याद दिलाते हैं कि द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, खबर नहीं, और भगवान जाने क्या है, और करने लगा धर्म। गुरुदेव के पास भी आने वाले केवल सुनने के लिए आने वाले तो कम होते थे, चलो जाए महापुरुष है दर्शन करेंगे, हाँ दर्शन करने से कल्याण होगा मानते, जैसे भगवान के दर्शन करने जाते यात्रा करते क्या, अनेक अनेक मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन करते, वैसे जाना है गुरुदेव को देखना है, हाँ हमने अपने आँखों से देखा उनको ऐसा लगता है, अरेपन वो क्या बता रहे उसकी एक एक बात जो सूक्ष्मता से समझ में आवे तो कल्याण हो जावे, ऐसी बात है। मतलब मेजोरिटी तो ऐसे ही जाते थे, उनके हमेशा सुनने वालों में भी कितने ऐसे थे कि जिनको उसकी सूक्ष्मता ख्याल में नहीं आती थी, बस हा 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 करते रहते थे। हमको तो कितने मिले बाद में, अभी अहमदाबाद में वगैरह भी बहुत मिले, जब इनके सिद्धांत प्रवेशिका के क्लासेस होते थे, कहते गुरुदेव क्या कहते थे अभी हमको समझ में आ रहा है, हम 40 साल से उनको सुन रहे, ऐसा कहते, यहाँ आते तो हमारे घर में ठहरते, उसी में बड़प्पन मानते, उनके एक एक सारे एल्बम निकाल के देखते, देखो गुरुदेव मेरे घर में है, आते रहते हैं, मेरे यहाँ ये ठहरते हैं। अरे पर वो क्या कहते थे वो आज तक समझना नहीं, ऐसा कह रहे, यानी जब तक बेसिक मालूम नहीं, द्रव्य गुण पर्याय की सूक्ष्मता मालूम नहीं है, तब तक उनके कथन में कितने गंभीर रहस्य भरे हैं वो सब छूट जाता है, केवल वाणी कान पर पड़ने से कुछ नहीं कहा होता है ना। देखो ना अभी हम पढ़ रहे तो एक एक लाइन अंडरलाइन हो रही है पूरी, हाँ। यहाँ भगवान त्रिलोकनाथ मिला, ये बड़ा पैराग्राफ बीच वाला, परमात्मा वीतराग देवाधिदेव जैसी जड़ चैतन्य की भिन्न भिन्न गति परिणति, भिन्न भिन्न गति यानी उनकी चाल कहो गति कहो यानी परिणति, परिणमन भिन्न भिन्न उनका पर्याय है, उसका वर्णन करते हैं। ये पर्याय के लिए गति शब्द भी आया, परिणति शब्द भी आया, पर्याय शब्द भी आया, ऐसा जो मानने में आए ओहो हो मैं तो मेरे परिणाम का करता हूँ, जड़ कर्म बनता है वह विचित्रता का पर्याय कर्म की योग्यता से बनता है, यानी जड़ कर्म में जो विविधता होती है वो परमाणु की योग्यता है, मेरे कारण से नहीं, ऐसी दृष्टि हो तो अपना पुण्य पाप का भाव कृत्रिम क्षणिक उपाधि है, उसका मैं करने वाला अज्ञानपने में हूँ, क्या कहा, जब कर्म की जड़ कर्म की बात स्वीकार हो गई है, उसकी अपनी योग्यता से हो रही है, वो मेरे कारण नहीं है, ऐसे जब दृष्टि हो जाती है, अपना पुण्य पाप का भाव, पहले में तो अपना है नहीं, स्वयं की परिणति में इसको स्वीकार है, फिर वो कैसा है, कृत्रिम है और क्षणिक उपाधि है, वो मेरा कायमी स्वभाव नहीं है, उसका मैं करने वाला अज्ञानपने हूँ, मैंने अज्ञानपने से उसका करने वाला है, मैं शुद्ध चिदानंद ज्ञान स्वरूप हूँ, आत्मा ज्ञान का पुंज पूरस्व, क्या कहते हैं, मैं शुद्ध चिदानंद ज्ञान स्वरूप हूँ, और आत्मा कैसा है, तो ज्ञान का पुंज है, ज्ञान सूर्य है, चैतन्य सूर्य प्रभु आत्मा, देह देवल में भिन्न चैतन्य सूर्य प्रकाशमय आत्मा, ऐसे पुण्य पाप और पर की करतु तो बुद्धि छोड़कर, अज्ञान था तो उसको करता होता था पुण्य पाप का, अब जब अपना ख्याल आ गया तो कहते कि पुण्य पाप की और पर की करतु तो बुद्धि छोड़कर, कर्तृत्व बुद्धि ने उसका मैं करने वाला हूँ ऐसे मान्यता, ये मान्यता में लेना है, उसका मैं करता नहीं हूँ ये मान्यता में लेना है, यानी कर्तृत्व बुद्धि छोड़ना है, तो कर्तृत्व बुद्धि छोड़कर अपने शुद्ध स्वभाव की दृष्टि करें, कितना ही करना इतना, क्या है पुण्य पाप की जो कर्तृत्व बुद्धि या पर की कर्तृत्व बुद्धि पड़ी है उसको छोड़कर अपने शुद्ध स्वभाव की दृष्टि करें तो उसे सम्यक दर्शन रूपी प्रथम धर्म की उत्पत्ति होती है, समझ में आया, उसके बिना सम्यक दर्शन धर्म उसे होता नहीं, और सम्यक दर्शन हुए बिना उसे व्रत तप क्रिया चारित्र कुछ होते नहीं, क्या कहा, ये तो पहले में पहले ये सब अंगीकार करना चाहता है क्योंकि मोक्ष चाहिए उसको, जल्दी चाहिए ना, तो ऐसा लगता है कि मैं ये करूँ तो मुझे जल्दी मिल जाएगा, तो यहाँ क्या कहते हैं कि स्वभाव की दृष्टि बिना तो सम्यक दर्शन रूपी धर्म की उत्पत्ति नहीं होगी, उसके बिना सम्यक दर्शन ये धर्म नहीं होता, और आगे क्या लिखा, देखो सम्यक दर्शन हुए बिना उसे व्रत तप क्रिया चारित्र कुछ होते नहीं, वे सब बिना अंक के शून्य है, अंक बिना बिंदी जिसको कहेंगे, यानी हमने हमें चाहिए थे 1 करोड़ रुपए,
एकड़ा विना मिंडा,
एकड़ा विना ना मिंडा, यानी क्या करोड़ रुपए हमको इकट्ठा करने हैं, मंदिर बांधना है ना, तो हमने इकट्ठे किए 0, कितने कितने आते हैं एक के ऊपर,
7,
अच्छा तो हमने 7 0 इकट्ठे किए, 1 कभी भी करेंगे ऐसा सोचा, तो क्या उसकी वैल्यू कितनी है, तो कुछ नहीं है, पहले 1 रखो फिर 1 1 0 बढ़ाओ तो उसकी वैल्यू है, 10 है, 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, परंतु बिना अंक के बिंदी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये कह रहे, हो गया समय, यही रुकेंगे,
घड़ी आ गए
अभी करेंगे एक पेज, ये पेज करते पूरा, चलो, भगवान आत्मा अपने शुभाशुभ परिणाम के समय अपने परिणाम को करें, वो तो अपने परिणाम को कर ही रहा है ना, कर्म पुद्गल परिणाम, लो कर्म पुद्गल में परिणाम आया, कर्म में परिणाम है, परिणाम तो जीव में होता है, क्या पुद्गल में परिणाम होता है, कुछ खबर नहीं, यानी पुद्गल भी द्रव्य है, उसकी भी पर्याय उसके अपने कारण से होती, इसका भी पता नहीं है, ये कह रहे, परिणाम तो जीव में होता है, क्या पुद्गल में परिणाम होता है, कुछ खबर नहीं, पुद्गल में परिणाम होता है, सुन तो सही, पुद्गल में परिणाम, पुद्गल में पर्याय, पुद्गल में भाव, पुद्गल की दशा, पुद्गल में पुद्गल की होती है और उसके अपने से होती है, तो समझ में आता है ना, लोगस में एक शब्द नहीं आता, वी और एम वाला बहुत बार याद करते विसारो एम और उसका अर्थ क्या होगा उसकी खबर नहीं होती, विहू ये रहे मला भगवान जाने क्या अर्थ होगा, एवं मय अभिथुआ विहू ये रहे मला पहिन जर मरना, क्या अर्थ है उसकी खबर है भगवान जाने, उसे अर्थ की खबर नहीं, उसे भाव का भान कहाँ से हो और धर्म की दशा कहाँ से प्रकट हो, एक कल पढ़ना है कि अभी पढ़ना है,
एक पैराग्राफ
लेते हैं, क्योंकि वही विषय है ना,
हाँ।
यहाँ कहते विहु ये अर्थात टाले है, विहु नाम टाले है, नाश किया है। हे नाथ परमात्मा आपने क्या टाला है? रयमला, रय ने रज, ये आठ कर्म जिसे कहते हैं वे पुद्गल कर्म पुद्गल परिणाम सूक्ष्म रज है। रय अर्थात कर्म के रजकण प्रभु आपको छूट गए हैं, और मल यानी रयमला मल, मल यानी पुण्य और पाप का भाव, इन्हें रज भी चली गई और मल भी चला गया। दया दान भक्ति पूजा काम क्रोध हिंसा झूठ ऐसे शुभ और अशुभ भावों दोनों को मल कहते हैं, मैल है, अशुद्ध परिणति रूप मैल है, वे अरूपी जीव की दशा में है। यह अशुद्ध परिणति रूप मैल है वो जीव की दशा में, और रज है वह जड़ की पर्या है, कर्म की रज धूल है, दोनों चीज भिन्न है। विहि और रयमला, रज अलग है और मल अलग चीज है, और भगवान उससे दोनों से रहित हो गए, उन्होंने उसको छोड़ दिया है। अब बाकी बात हम कल करेंगे। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनं सदा देत हो ढू आशा है।